पृष्ठ संख्या 88। ऐतिहासिक दृष्टि से धर्म की उत्पत्ति और विकास के अंतर्गत अगला शीर्षक है, दूसरा राष्ट्रीय धर्म। धर्म के विकास का द्वितीय चरण जातीय धर्म के पश्चात राष्ट्रीय धर्म में देखा जाता है। जातीय धर्म में विभिन्न टोलियां अपने अपने धर्म का पालन करती थीं। जब ये टोलियां आपसी संघर्ष अथवा मित्रता के कारण एकता के सूत्र में बंध गई तो संगठित होकर राष्ट्र के रूप में प्रकट हुई। राष्ट्रीय भावना के विकास के साथ ही साथ सामाजिक चेतना का विकास हुआ, जिसका फल यह हुआ कि धार्मिक चेतना का विकास भी इसके अनुरूप ही हुआ। पृष्ठ संख्या 89। विकास की इस प्रक्रिया में व्यवहारिक आवश्यकताओं का ही विशेष महत्व देखा जाता है, क्योंकि सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय चेतना के कारण मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना पड़ा। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में एकता की आवश्यकता पड़ी। यही ऐक्य की भावना धर्म के क्षेत्र में भी देखी जाती है। विभिन्न टोलियों में बटा हुआ धर्म अब एक राष्ट्र का धर्म बन गया। अगला शीर्षक है, राष्ट्रीय धर्म के विकास की प्रक्रिया। राष्ट्रीय धर्म के विकास में क्रमशः कई रूपों में प्रगति पाई जाती है। धर्म के इतिहास में यह बीच का काल माना जा सकता है। इसमें प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के रूप में मानकर उसका मानवीकरण, नैतिकीकरण और ईश्वरीकरण भी किया जाता है। इसके साथ ही अनेक धार्मिक संस्कारों और व्यवहारों का भी प्रारंभ देखा जाता है। यही भावना आगे चलकर एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवाद के रूप में भी प्रकट होती है। इस प्रकार हम राष्ट्रीय धर्म में विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला शीर्षक है, बहुजीववाद से बहुदेववाद तथा मानवीकरण। जातीय धर्म से चलकर जब धर्म राष्ट्रीय धर्म की ओर बढ़ा, तब उस समय सबसे बड़ा परिवर्तन बहुजीववाद के स्थान पर बहुदेववाद के रूप में पाया जाता है। जातीय धर्म जिन जीव आत्माओं को मानता था, उनका राष्ट्रीय धर्म में मानवीकरण होना प्रारंभ हुआ। जीवात्माओं को दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया। जिन प्राकृतिक शक्तियों की पहले पूजा होती थी, उनमें मानवीय गुणों का आरोपण किया गया और वे दिव्य शक्तियां देवताओं के रूप में विभिन्न नामों से अभिहित की जाने लगीं। ये शक्तियां जीवन के विभिन्न पक्षों में देवताओं के रूप में अधिष्ठित की जाने लगीं और उनको एक एक विभाग का संरक्षक भी माना गया। उदाहरण के लिए भारत में अग्नि को देवता के रूप में कल्पित किया गया। पर्शियन में अहूरा प्रकाश के देवता, बेबीलोनिया में मारडुक, इजिप्ट में रा सूर्य देवता, ग्रीक में जीयस, लैटिन में जुपिटर स्वर्ग देवता, जर्मन में ओडिना और भारत में इंद्र वर्षा के देवता माने जाने लगे। यद्यपि इन देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का अधिष्ठाता माना गया, फिर भी कुछ ऐसे देवताओं के नाम आते हैं जो राष्ट्रीय देवता माने गए और उनका मानवीकरण हुआ। इनके विशिष्ट नाम रखे गए जो धर्म में उपासना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे भारत में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इजिप्ट में ओरिसिस, ग्रीक में अपोलो, लैटिन में मार्स आदि। निःसंदेह जब इन देवताओं का व्यक्तिगत रूप में नाम रख दिया गया तब इनको अमर समझा जाने लगा और इनकी पूजा भी होने लगी तथा इनके विषय में अनेक गाथाएं और कहानियां भी बताई जाने लगी। देवताओं की गाथाओं और कहानियों में उनके गुणों और नैतिक आचरणों का भी उल्लेख मिलता है, जिनका पौराणिक रूप में महत्व है। इन पौराणिक कथाओं का सबसे बड़ा महत्व इस अर्थ में है कि देवताओं का नैतिकीकरण किया गया, जो धर्म के लिए आवश्यक ही था। दूसरा शीर्षक है पौराणिकता का जन्म तथा देवताओं का नैतिकीकरण। राष्ट्रीय धर्म के विकास की दूसरी प्रक्रिया पौराणिकता के उद्भव और देवताओं के नैतिकीकरण में देखी जाती है। राष्ट्रीय धर्म में जब देवताओं को प्राकृतिक जगत से भिन्न एक आध्यात्मिक जगत की शक्ति माना गया तब उनमें अनेक नैतिक, सामाजिक और उच्च आध्यात्मिक गुणों का पौराणिक कथाओं के आधार पर आरोपण किया जाने लगा। यहीं से पौराणिकता का जन्म होता है और देवताओं में विशिष्ट गुणों की कल्पना के आधार पर विशिष्ट देवता का विशिष्ट कार्य क्षेत्र भी माना गया। अब देवता केवल प्राकृतिक शक्ति नहीं रह गया, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न महान पूज्य बन गया। पृष्ठ संख्या 90। देवताओं के इन गुणों का वर्णन राष्ट्रीय धर्म में पौराणिक कथाओं के द्वारा ही चित्रित किया गया। प्रोफेसर एडवर्ड के शब्दों में पुराणों की रचना स्वतः स्फूर्त रूप में होती है। यह एक प्रकार का मानव विज्ञान और शुद्ध दर्शन शास्त्र है। इससे मानव की प्रारंभिक जिज्ञासा की संतुष्टि होती है। एडवर्ड महोदय ने धर्म और पौराणिकता में अंतर करते हुए ठीक ही लिखा है कि पौराणिकता को धर्म का पर्याय नहीं कहा जा सकता। पौराणिकता केवल धर्म का बौद्धिक विवेचन है। उन्होंने धर्म के बौद्धिक पक्ष को तीन रूपों में विकसित पाया है। पहला है पौराणिकता के रूप में, दूसरा है धर्मशास्त्र के रूप में, तीसरा है धर्म दर्शन के रूप में। इस दृष्टि से पौराणिकता को न तो धर्म ही कहा जा सकता है और न तो धर्म उत्पत्ति ही इससे मानी जा सकती है। धर्म में तो धार्मिक क्रियाएं, पूजा, प्रार्थना आदि पुराणों से अधिक प्राचीन है। पौराणिकता से अधिक इन क्रियाओं का ही धर्म में महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म में पौराणिकता का कोई महत्व नहीं है। पुराणों में धर्म के मूलभूत सत्य की दृष्टांतों द्वारा व्याख्या की जाती है, जिनका मनुष्य बौद्धिक प्रगति के साथ प्रतीकात्मक अर्थ निकालता है। मानव पौराणिक आध्यात्मिक कथनों, तथ्यों तथा चरित्रों का अपने वर्तमान जीवन से सामंजस्य स्थापित करता है और धर्म को अधिक बुद्धिग्राह बनाने का प्रयास करता है। पौराणिकता का सबसे बड़ा लाभ तो देवताओं के नैतिक चरित्र चित्रण में देखा जाता है। विभिन्न देवताओं में न्याय, पवित्रता, ऐश्वर्य, शुभ एवं करुणा आदि गुणों का आरोपण पुराणों में अस्पष्ट रूप से मिलता है। उदाहरणार्थ विजय एवं ऐश्वर्य के गुण भारत के देवता इंद्र, लैटिन के मार्स और टिटोनिक थोर में माने जाते हैं। न्याय के देवता वरुण, आशीर्ष तथा जियस हैं और अहुर मज्द शुभ तथा प्रकाश के देवता माने जाते हैं। अगला तीसरा शीर्षक है अनेकेश्वरवाद से एकेश्वरवाद की ओर प्रगति। राष्ट्रीय धर्म की प्रगति अनेक देवताओं के नैतिकीकरण के फलस्वरूप अनेकेश्वरवाद से एकेश्वरवाद की ओर देखी जाती है। धर्म में यह एकेश्वरवादी प्रवृत्ति तीन रूपों में पाई जाती है। इसमें पहला बिंदु अ शीर्षक है एक राष्ट्र द्वारा एक ही ईश्वर की मान्यता। राष्ट्रीय धर्म में विभिन्न जातियां जब एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं, तब एक राष्ट्र अपने एक देवता को अन्य राष्ट्रों के देवताओं की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान करने लगता है। इसके कारण ही एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे समाज में एक राजा होता है और सभी उसी के अधीन होते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग में भी एक सर्वप्रधान देवता होता है और अन्य देवता उसी प्रधान देवता के अधीन होते हैं। इस व्यवस्था के प्रतीक यूनानी देवता जियस, रोम के जुपिटर तथा बेबीलोन के मार्दुक आदि माने जा सकते हैं। अब बिंदु ब शीर्षक है भक्त की प्रगाढ़ता के कारण बहु देवताओं में से किसी एक पर ही अधिक बल देने से। अनेक देववाद से एक देववाद की प्रवृत्ति तब बढ़ती है जब मनुष्य अनेक देवताओं में से किसी एक देवता को ही भक्त की प्रगाढ़ता के कारण महत्व देने लगता है। मैक्स मूलर ने इस प्रवृत्ति को हेनोथिज्म नाम से अभिहित किया है। अनेक देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी मनुष्य भक्त की तीव्रतर भावना के कारण किसी एक देवता को प्रधानता देता है और अन्य देवता उसी में विलीन प्राय हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति में बुद्धि की अपेक्षा भावना की ही प्रधानता मिलती है। इस प्रवृत्ति की तुलना एडवर्ड ने प्रेमी प्रेमिका के संबंध से की है। जैसे एक प्रेमी अनेक नारी के होते हुए भी अपनी प्रेमिका को ही सर्वोपरि मानता है, उसी प्रकार भक्त अनेक देवताओं के रहते हुए भी एक ही देवता को प्रमुख मानता है। इस प्रवृत्ति में यह भी देखा जाता है कि कभी कोई देवता सर्वप्रधान होता है, कभी कोई, जैसे कभी अदिति को सर्वोपरि माना गया तो कभी वरुण को, फिर कभी मित्र को। पृष्ठ संख्या 91। अगला शीर्षक है बिंदु स, एक ही परम तत्व के विभिन्न रूपों में देवताओं की कल्पना। एकेश्वरवाद की ओर जाने की तीसरी प्रवृत्ति तब देखी जाती है जब मानव ने अनेक देवताओं को एक ही परम तत्व के विभिन्न रूपों में स्वीकार किया। यह प्रवृत्ति भावना की अपेक्षा बुद्धि पर निर्भर है। भारतीय उपनिषदों में इस प्रकार के कथन मिलते हैं जिसमें अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि उसी सत्ता के अंग हैं। अंत में ब्रह्म को ही परम सत्ता के रूप में कल्पित किया गया है और अनेकतापूर्ण संसार माया स्वरूप है। इसीलिए एकेश्वरवाद की यह प्रवृत्ति सर्वेश्वरवाद की ओर मुड़ती है। भारत में वैदिक बहुदेववाद सर्वेश्वरवाद के रूप में प्रकट हुआ। यह प्रवृत्ति भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी पाई जाती है। यथा मिस्र में सूर्य को सभी देवताओं की आत्मा के रूप में माना गया और यहूदियों में नैतिक एकेश्वरवाद विकसित हुआ। अगला शीर्षक है बिंदु चौथा का, धार्मिक व्यवहार एवं क्रियाएं। इसके अंतर्गत कर्मकांड, यज्ञ, बलि, प्रार्थना आदि। राष्ट्रीय धर्म के विकास में चौथी प्रक्रिया धार्मिक व्यवहार एवं क्रियाओं के रूप में देखी जाती है। धर्म में केवल भावना और विश्वास का ही स्थान नहीं है, इसके लिए संकल्प या इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है, तभी धर्म सांगोपांग दृष्टि से पूर्ण कहा जा सकता है। राष्ट्रीय धर्म में क्रिया शक्ति का महत्व पाया जाता है, कर्म कांडों की प्रचुरता मिलती है, यज्ञ, आहुति एवं बलि प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ये क्रियाएं कई दृष्टिकोणों से संपन्न होती हैं। प्रथम, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति हवन, पूजन या बलि करता है। दूसरे, कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा से। तीसरे, ईश्वर से ऐक्य बोध के लिए बलि या यज्ञ की क्रिया पूरी की जाती है। और चौथे, देवताओं के प्रति शुद्ध भक्ति भावना के कारण धार्मिक संस्कार और व्यवहार संपन्न किए जाते हैं। इसमें केवल देवता को प्रसन्न करके उनको रिझाने के उद्देश्य से ही धार्मिक व्यवहार किए जाते हैं। यह भी देखा जाता है कि धार्मिक भावना जब आंतरिकता में प्रविष्ट होती है, तब व्यक्ति धर्म में बाह्य क्रियाकलापों को त्याग कर आंतरिक भावना को महत्व देने लगता है और बाह्य क्रियाओं का महत्व समाप्त हो जाता है। उनके स्थान पर धार्मिक भावनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भावना की प्रगाढ़ता में मनुष्य आंतरिकता को लेकर ही धर्म में प्रविष्ट होता है। वह फिर परम सत्ता या ईश्वर को आंतरिक रूप से पुकारने लगता है। उसका विश्वास होता है कि आंतरिक भावना की पुकार को वह शक्ति सुनती है। यह आंतरिक पुकार है, प्रार्थना। अब अगला शीर्षक है बिंदु ब, प्रार्थना। प्रार्थना व्यक्ति की किसी परम सत्ता के प्रति आंतरिक पुकार है। प्रार्थना की क्रिया सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में सार्वभौमिक रूप से पाई जाती है। धर्म के आचार्य प्रार्थना को ही धर्म का सर्वस्व मानते हैं। वास्तविक अर्थों में की गई प्रार्थना ही सच्चा धर्म है। प्रार्थना में विकास की प्रक्रिया दो रूपों में पाई जाती है, पहला विधि रूप में, दूसरा विषय के रूप में। अब अगला शीर्षक है पहला विधि के रूप में प्रार्थना। राष्ट्रीय धर्म में प्रार्थना की क्रिया का जो विकास हुआ, वह जादू में की जाने वाली प्रार्थना की विधि से भिन्न थी। जादू और धर्म में की जाने वाली प्रार्थना का स्वरूप ऊपर से समान होते हुए भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। वास्तविक प्रार्थना की विधि निवेदनात्मक होती है। ऐसी प्रार्थना में विनम्रता, निवेदन, श्रद्धा तथा कृतज्ञता की भावना होती है। जादू में चमत्कार की प्रधानता होती है। इसमें अहंकार और प्रभुत्व की भावना का प्राबल्य होता है। पृष्ठ संख्या 92। राष्ट्रीय धर्म में इन दोनों की प्रार्थनाओं में अंतर स्पष्ट हो चुका था। यद्यपि आदिम धर्म में प्रार्थना का यह विभेद परिलक्षित नहीं होता। प्रार्थना की क्रिया का विकास इसी अर्थ में देखा जाता है कि इसका जादू में की जाने वाली प्रार्थना से संबंध विच्छेद हो गया। बिंदु दूसरा शीर्षक है विषय के रूप में प्रार्थना। प्रार्थना के विकास का दूसरा रूप प्रार्थना के विषय में देखा जाता है। आदिमकालीन प्रार्थना का विषय भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति थी। स्वार्थ और उपयोगिता मूलक प्रार्थना ही आदिमकालीन प्रार्थना की विशेषता थी। धार्मिक चेतना के विकास के साथ वास्तविक प्रार्थना नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए की जाने लगी। आध्यात्मिकता की भावना जितनी ही प्रबल रूप धारण करती गई, प्रार्थना उतनी ही भावमूलक और अध्यात्ममूलक बन गई। अंत में प्रार्थना केवल प्रार्थना के ही लिए की जाने लगी। आध्यात्मिक भूख बढ़ने पर प्रार्थना केवल ईश्वर या परम सत्ता से एक रूपता और तादात्म्य के लिए की जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपनी इच्छा नहीं बल्कि जगत में ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए करता है। अगला शीर्षक है जातीय धर्म तथा राष्ट्रीय धर्म में अंतर। इसमें पहला बिंदु है जातीय धर्म तथा राष्ट्रीय धर्म में मुख्य अंतर देवताओं के विषय में है। जातीय धर्म के देवताओं की अपेक्षा राष्ट्रीय धर्म के देवताओं का नामकरण तथा उनमें गुणों का आरोपण किया जाता है। इस धर्म में आराधक और आराध्य के बीच संबंध पाया जाता है, जबकि जातीय धर्म में आराध्य और आराधक का संबंध दृष्टिगोचर नहीं होता। दूसरा है सभ्यता के विकास के साथ जातीय धर्म की अपेक्षा राष्ट्रीय धर्म में देवताओं में मानवीय नैतिक गुणों का भी आरोपण किया गया। पूर्वज आराधना से श्रेष्ठ देव आराधना मानी जा सकती है, जिसमें मानवीय गुणों के अतिरिक्त आदर्श को भी पाया जाने लगा। तीसरा है राष्ट्रीय धर्म में देवता केवल इसी जगत में ही विचरण करने वाले नहीं रहे, बल्कि जगत से परे भी उनके विचरण की परिकल्पना की गई। वे इसी दुनिया की वस्तुओं में ही आबद्ध नहीं रहे। इसी भावना ने संभवतः राष्ट्रीय धर्म में विश्व धर्म को जन्म दिया। अब अगला शीर्षक है राष्ट्रीय धर्म की विशेषताएं। उपर्युक्त अंतर को देखते हुए राष्ट्रीय धर्म की कुछ विशेषताओं का दिग्दर्शन अवश्य होता है, परंतु कुछ विशेषताओं का अस्पष्ट विवरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है शक्ति की अवधारणा। राष्ट्रीय धर्म में अनेक देवताओं के रूप में अनेक शक्ति की कल्पना की गई। आज मान्यता तो इसी में है कि शक्ति ही सृष्टि का आधार है। दूसरा है संसार में एक व्यवस्था की धारणा। राष्ट्रीय धर्म में विश्व में एक व्यवस्था की अवधारणा देखी जाती है। भारत में ऋतु की धारणा में एक व्यवस्था देखी जाती है। बेबीलोनिया और चीन में भी जगत के व्यवस्थापूर्ण माना गया है। तीसरा है धार्मिक आचरण और आध्यात्मिकता का विकास। राष्ट्रीय धर्म का सर्वोच्च विकास प्रार्थना में देखा जाता है। इस धर्म की प्रार्थना आदिमकालीन प्रार्थना से नितांत भिन्न और जादू से मुक्त है। यह अध्यात्म का सच्चा स्वरूप है। चौथा है नैतिकता की प्रधानता। राष्ट्रीय धर्म में विभिन्न देवताओं में विभिन्न नैतिक गुणों का आरोप मिलता है, जैसे इंद्र में शौर्य, वरुण में न्याय, एथिनों में ज्ञान तथा हेस्टिया में पवित्रता के गुणों को माना गया। पृष्ठ संख्या 93। पांचवा है बहुदेववाद की धारणा। जातीय धर्म में बहुजीववाद की प्रधानता थी, परंतु राष्ट्रीय धर्म में बहुदेववाद को स्थान मिला। एक के स्थान पर अनेक देवों की कल्पना की गई। इस बहुदेववादी प्रवृत्ति ने ही अंत में एकेश्वरवाद और बाद में सर्वेश्वरवाद को जन्म दिया। अगला शीर्षक है राष्ट्रीय धर्म की आलोचना। इसमें पहला बिंदु है, राष्ट्रीय धर्म में जाति धर्म की ही तरह राष्ट्र को महत्व दिया गया, न कि व्यक्ति को। इसलिए व्यक्तिवादी धार्मिक चेतना का विकास नहीं हो सका। बिंदु दूसरा है, इस धर्म में अनेकेश्वरवाद या बहुदेववाद की धारणा है। इसमें असीम देवताओं का ही उल्लेख मिलता है। निश्चित है कि धार्मिक चेतना का विकास ससीम की अपेक्षा असीम की धारणा से ही अधिक होता है। धर्म में असीम ही संतोष प्रदान करता है। तीसरा है अज्ञेयवाद की झलक। राष्ट्रीय धर्म में सांसारिक वस्तुओं तक ही धर्म सीमित था। देवताओं की कल्पना सांसारिक वस्तुओं से ही संबंधित थी। परे की सत्ता के विषय में ज्ञान संभव नहीं था। इसीलिए इसमें अज्ञेयवाद को प्राश्रय मिलता है। अगला शीर्षक है तीसरा, विश्वव्यापी धर्म। विश्वव्यापी धर्म को आध्यात्मिक धर्म की भी संज्ञा प्रदान की जा सकती है। धर्म के इतिहास में विश्वव्यापी धर्म धर्म का सबसे नवीन रूप माना जाता है। धर्म के विकास की यह चरम सीमा कही जा सकती है। यह धर्म किसी जाति अथवा राष्ट्र की सीमा में आबद्ध नहीं रहता। इसीलिए इसे विश्वव्यापी धर्म या सार्वभौमिक धर्म कहा जाता है। धर्म के बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर यह धार्मिक चेतना के आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व देता है। इसमें आध्यात्मिकता का स्थान सर्वोपरि होता है। विश्वव्यापी धर्म राष्ट्रीय धर्म से कई अर्थों में भिन्न है। राष्ट्रीय धर्म में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार वह राष्ट्रीय जीवन का एक अंग है। इस धर्म में राष्ट्र को ही सर्वोपरि मानकर धार्मिक मान्यता को महत्व दिया जाता है। इसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं होती, जो कि धर्म के लिए अनिवार्य तत्व कहा जा सकता है। धर्म जब स्वेच्छा स्वीकार किया जाता है, तभी वह जीवंत रूप लेता है। विश्वव्यापी धर्म में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को भी महत्व दिया जाता है। समय समय पर कुछ ऐसे संत, पैगंबर और रहस्यवादी उत्पन्न होते रहे हैं, जिन्होंने धर्म में व्याप्त रूढ़िवादिता का प्रतिकार किया है और स्वानुभूत धर्म का प्रचार किया है। ऐसा धर्म सीमाओं में आबद्ध नहीं रहता। राष्ट्रीय धर्म राष्ट्र की सीमा में बंधा रहता है। राष्ट्र जिस रूप में धर्म को चाहता है, व्यक्ति उसी धर्म का पालन राष्ट्र के हित में करता है। कुछ धर्म दार्शनिक ईसाई धर्म को ही विश्व धर्म मानते हैं। ईसाई धर्म अवश्य ही विश्व धर्म की श्रेणी में आता है, परंतु बहुत से धर्म यथा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म तथा जरथुस्त धर्म आदि ऐसे धर्म हैं जिनमें ईसाई धर्म से कहीं अधिक विश्वव्यापी धर्म के गुण और तत्व वर्तमान हैं। इन्हें भी विश्वव्यापी धर्म के अंतर्गत लिया जाता है। विश्व धर्म के कुछ विशेष तत्वों के आधार पर ही उसकी कसौटी निर्धारित की जा सकती है, यथा पहला सीमाओं से मुक्त होना, दूसरा मानव स्वभाव में निहित सामान्य तत्वों पर आधारित होना, तीसरा व्यापकता, चौथा आध्यात्मिक भावना की प्रगाढ़ता, पांचवा मानवीय मूल्यों का महत्व, छठवां व्यक्तिगत स्वतंत्रता। राष्ट्रीय धर्म में इन तत्वों का पूर्णतया लोप हो जाता है। राष्ट्रीय धर्म पूर्णतया विकसित होने पर भी आंतरिकता का विकास नहीं कर पाता। इसमें बाध्यता की भावना देखी जाती है। पृष्ठ संख्या 94। शासकीय दबाव और बंधन के कारण पूजा और कर्मकांड उसी रीति से करने पड़ते हैं जिसे राष्ट्र चाहता है। राष्ट्र के एक नागरिक होने के नाते ही व्यक्ति को राष्ट्र के धर्म का भी पालन करना पड़ता है। सारांश यह है कि राष्ट्रीय धर्म राजनैतिक कर्तव्य के रूप में ही देखा जाता है। धर्म के आंतरिक पक्ष को महत्व न देकर बाह्य व्यवहार को ही महत्व दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वव्यापी धर्म का उद्भव एकाएक हो गया। विकास की प्रक्रिया क्रमिक ही होती है। कुछ लोग त्वरित विकास को भी महत्व प्रदान करते हैं, परंतु विश्व धर्म में त्वरित विकास के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने देखा है कि आदिम काल से ही जीववादी तथा प्राणवादी सिद्धांत में एक आत्मा या स्पिरिट की धारणा मिलती है, जो स्वतंत्र रूप से जगत में तथा जगत के परे विचरण करती थी। वही पूजा का विषय है। पारलौकिक जगत में विश्वास के फल स्वरूप भी विश्वव्यापी धर्म का सूत्रपात हुआ। राष्ट्रीय धर्म में भी एकेश्वरवाद की धारणा अंत तक दिखाई देती है और इसके पश्चात सर्वेश्वरवाद की भी भावना उत्पन्न होती है। इन धारणाओं के फल स्वरूप भी विश्व धर्म की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्वव्यापी या आध्यात्मिक धर्म की जड़ आदिम तथा राष्ट्रीय धर्म में भी पाई जाती है। अगला शीर्षक है विश्वव्यापी धर्म में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। विश्वव्यापी धर्म का विकास यद्यपि इसके पिछले धर्मों के आधार पर ही हुआ है, तथापि इसमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक महापुरुषों और प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्वों का भी योगदान है। राष्ट्रीय धर्म से व्यक्ति में भी जागरूकता उत्पन्न होती है और वह धार्मिक अनुभूतियों की अभिप्सा के कारण स्वयं धार्मिक चेतना का केंद्र बन जाता है। वह अपनी साक्षात धार्मिक अनुभूति को आधार मानकर समाज में आंतरिक और आध्यात्मिक धर्म का प्रचारक बन जाता है। विश्व के अनेक धर्मों में ऐसे व्यक्ति संत या पैगंबर के रूप में प्रकट होते हैं और अपने धार्मिक मतों का प्रचार और प्रसार समाज में करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के आचार्य और सुधारक भी कहे जा सकते हैं। उनका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ही सार्वभौमिक धर्म का रूप लेता है। ऐसे व्यक्ति समाज और धर्म में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों का खंडन करते हैं और नवीन धार्मिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय मूल्यों की स्थापना करते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि धर्म के अधिष्ठाता पुरोहित और पंडे भी होते हैं, परंतु वे प्राचीन परंपराओं में जकड़े हुए रहते हैं। विश्वव्यापी धर्म के विकास में उनका योग नहीं होता। इसका श्रेय तो संतों और पैगंबरों को दिया जा सकता है, जो समय के साथ देवदूत या ईश्वर कोट में भी गिने जाने लगते हैं। वह अपने समय का एक ही व्यक्ति होता है जो समाज या धर्म की रूढ़ियों से ग्रस्त नहीं होता। वह शाश्वत धर्म का उद्घोषक होता है। वह सामाजिक पक्ष के स्थान पर वैयक्तिक पक्ष को अधिक महत्व देता है। धर्म के इतिहास में इस व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का प्राबल्य ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक देखा जाता है। उदाहरणार्थ इजराइल के यहूदी पैगंबर, पारसी के जरथुस्त, चीन के कन्फ्यूशियस और भारत में बुद्ध और जैन धर्म के स्वामी महावीर का प्रादुर्भाव हुआ। यूनान में रहस्यवादी विचारों का भी विकास इसी समय हुआ। इन व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों के फलस्वरूप ही नवीन विचारों और सिद्धांतों का उद्भव हुआ तथा विश्वव्यापी धर्मों का सूत्रपात हुआ। यह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण विश्व के विभिन्न देशों में पाया जाता है। भारतीय धर्म परंपरा में यह प्रवृत्ति वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म में पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप बुद्ध और महावीर स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। पृष्ठ संख्या 95। यहूदी और ईसाई परंपरा में इजराइल में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। आइजाइया, होशिया तथा अमोस आदि पैगंबरों ने धर्म के आंतरिक पक्ष पर विशेष बल दिया। इनके विचारों में नैतिकता और मानव मूल्यों का समर्थन मिलता है। धर्म की सीमाओं से मुक्त करके इन पैगंबरों ने सार्वभौमिक रूप दिया। क्राइस्ट के आने के पश्चात यहूदी धर्म ईसाई धर्म के रूप में विश्वव्यापी धर्म बना। अगला शीर्षक है विश्वव्यापी धर्म की विशेषताएं। इसमें पहला बिंदु है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। विश्वव्यापी धर्म में संतों और पैगंबरों के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से धर्म जातीय या राष्ट्रीय सीमा में आबद्ध नहीं रहता। विश्व और जीवन के प्रति इन ऊर्ध्वचेती व्यक्तियों के नवीन दृष्टिकोण और विचार होते हैं, जो विश्व के समस्त मानव के लिए ग्राह्य होते हैं। बिंदु दूसरा है धर्म में आंतरिकता। विश्वव्यापी धर्म केवल बाह्य आडंबर, रूढ़ि और परंपराओं तक सीमित नहीं रहता। इससे धार्मिक अनुभूति और धर्म के आंतरिक पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। बिंदु तीसरा है धर्म का स्वतंत्र विकास। इस धर्म की मनोवृत्ति और विचारधारा किसी जाति या राष्ट्र या संप्रदाय तक सीमित नहीं रहती। इसका विकास स्वतंत्र रूप से होता है और इसका संबंध संपूर्ण विश्व से होता है। बिंदु चौथा है मानवतावादी स्वरूप। इसका स्वरूप मूलतः मानवतावादी होता है। ईश्वर या परम सत्ता मानवीय गुणों से युक्त भी मानी जाती है और मानव को समुचित स्थान दिया जाता है। बिंदु पांचवा है समन्वय की धारणा। विश्वव्यापी धर्म में संकीर्णता और बद्धता नहीं होती। यह किसी एक देश और जात का धर्म नहीं होता, यह मानव का धर्म भी कहा जा सकता है। संसार के सभी मानव इसके अधिकारी हैं। इस दृष्टि से यह समन्वय का संदेश देता है। विभेदीकरण की क्रिया इस धर्म में दृष्टिगोचर नहीं होती। बिंदु छठवां है सक्रियता एवं गतिशीलता। इसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता होती है जिससे इसकी गति में अवरोध नहीं होता। इसका विकास बहुमुखी होता रहता है। यदि कहीं भी कोई सड़ांध या रुकावट आती है तो व्यक्ति इसका प्रतिरोध करता है और यह पुनः गतिशील हो जाता है। संत और पैगंबर इसका परिमार्जन करते रहते हैं। इसीलिए यह धर्म सक्रिय एवं गतिशील बना रहता है। अध्याय 3 समाप्त।